Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmanand Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhaga ki Prashnopanishad ka vichar pravachan satra mein hum log kar rahe hain. प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्न के सप्तम मंत्र तक की चर्चा कल तक हुई है. चतुर्थ मंत्र में प्राणादि ने मुख्य प्राण के महात्म्य का बोध वागादि को हुआ, इसलिए वागादियों का जो ये अभिमान था कि हम ही शरीर का विधारण करते हैं, यह निवृत्त हुआ. मुख्य प्राण के वाक्य पर विश्वास हुआ कि मुख्य प्राण ही शरीर का विधारण करता है करके. फिर मुख्य प्राण की स्तुति करने लगे और मुख्य प्राण की स्तुति पंचम मंत्र से प्रारंभ हुई. उसमें बताया गया कि परजन्य अग्नियादि रूप बनकर के दहनादि कार्य जो हो रहे हैं वह यह मुख्य प्राण ही कर रहा है अग्नियादि का रूप धारण करके. यानी अग्नियादि रूप मुख्य प्राण ही है का अर्थ है कि मुख्य प्राण सर्वात्मा है, सर्वस्वरूप है और ये संपूर्ण जगत का आश्रय भी मुख्य प्राण ही है. मुख्य प्राण में सर्वात्मत्व गुण है जैसे, ऐसे सर्वाश्रयत्व गुण भी है. इसे अरे तथा रथनाभि के दृष्टांत से समझाया. तो रथनाभि जैसे अरुण की आश्रय भूता है, ऐसे ये सारा श्रद्धादि समस्त जगत ये मुख्य प्राण में ही आश्रित है. मुख्य प्राण उनका आश्रय है का अर्थ हुआ कि सर्वाश्रयत्व गुण से संपन्न है मुख्य प्राण. और वेद के मंत्र जो ऋक् साम यजु हैं और उनसे निर्वर्तित होने वाले यज्ञ हैं और यज्ञ का निर्वर्तन करने वाले क्षत्रिय ब्राह्मण आदि हैं, वे सब के सब प्राण के आश्रित ही हैं. का मतलब सर्वाश्रय प्राण है. ये एक गुण बताया गया छठवें मंत्र में. पांचवें मंत्र में बताया गया था सर्वात्मत्व, छठवें मंत्र में बताया गया सर्वाश्रयत्व गुण और सातवें मंत्र में बताया गया प्राण के ही सर्वात्मत्व को स्पष्ट करते हुए कि ये विराट जो प्रजापति कहलाता है, समष्टि स्थूल शरीर ब्रह्मांड कहिए, वह भी कोई आपसे अलग नहीं, आप ही हो क्योंकि आपका ही कार्य है. प्राण समष्टि प्राण उपाधिक चैतन्य ही अपंचकृत पंचमहाभूतों का पंचीकरण करके स्थूल पंचभूतों को तथा फिर स्थूल पंचभूतों के कार्यों का कारण है ना. इसलिए माना जाता है कि सुख ये समष्टि प्राण ने ही, सूत्रात्मा ने ही इन प्रजापति का रूप धारण किया है, विराट का रूप धारण किया है. ये बना करके फिर इसमें स्वयं ही प्रविष्ट हुआ है. तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत के अनुसार पहले सूक्ष्म समष्टि शरीर को बना करके उसमें प्रवेश किया कारण ब्रह्म ने, और फिर कारण ब्रह्म ने कहा यह सूक्ष्म भूत है, सामग्री स्थूल जगत को निर्माण करने के लिए और आगे की सृष्टि स्थूल सृष्टि बना लेना स्वयं, किसे सूत्रात्मा को कहो या हिरण्यगर्भ को कहो, ईश्वर ने कह दिया और स्वयं फिर शांत हो गए, निर्व्यापार हो गए, हिरण्यगर्भ को बना करके और स्थूल सृष्टि बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में सूक्ष्म पंचभूत हिरण्यगर्भ को दे करके कह दिया कि आगे के सृष्टि का निर्माण आपको करना है, और सूत्रात्मा ने पंचीकरण करके अपंचकृत पंच महाभूतों से पहले स्थूल भूत बनाए, फिर स्थूल भूतों से यह समष्टि स्थूल शरीर रूप ब्रह्मांड बनाया और उसके अंदर पूर्वेष्टि शरीर भी बनाए। और इस ब्रह्मांड में प्रवेश किसने किया? जिसने ब्रह्मांड को बनाया, का मतलब विराट भी वही बना। अपने भोगायतन के रूप में विराट नामक स्थूल समष्टि शरीर को स्वीकार किया। इसलिए मंत्र ने बताया कि प्रजापति जो है यानी विराट है वो आप ही हो, मुख्य प्राण को कहा वागादियों ने। और ये सारे वेष्टि 84 लाख प्रकार की योनियां जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर के अभी तक चल रही हैं, तो आप ही उन पूर्व पूर्व योनि के पुरुष तथा स्त्री के गर्भ में विचरण करके फिर उत्तर उत्तर तत्तद योनि का शरीर रूप धारण करते हो, यानी वेष्टि रूप में भी आप ही हो। तो इस प्रकार सर्वात्मत्व को और भी स्पष्ट करते हुए सातवें मंत्र में ये कहा कि जिस कारण से फिर सारे स्थूल शरीरों में वागादि इंद्रियों के साथ उन स्थूल शरीर के धारणकर्ता के रूप में आप ही रहते हो, उनमें प्रधान बन करके। इसलिए क्या करते हैं कि जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, श्रेष्ठ होता है, बाकी कनिष्ठ जो होते हैं उनकी सेवा करते हैं प्रधान की, मुख्य की। तो सभी वेष्टि शरीरों में प्रधान है यह प्राण ही, इसलिए सभी वेष्टि शरीरस्थ वागादि इंद्रिया जो मुख्य प्राण की दृष्टि में गौण है, वे क्या करते हैं कि मुख्य प्राण की रुचिकर जो वस्तुएं हैं वे उसे ला करके प्रदान करते हैं। यही है उसे भेंट प्रदान करना। ये सातवें मंत्र के उत्तरार्ध में कहा कि तुभ्यं प्राण प्रजा त्विमा बलिम हरंति से, हे प्राण यह जो प्रजा है यानी सारे प्राणी हैं वे अपने अपने चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा रूपादि विषयों का ग्रहण करके क्या करते हैं? आपको ही समर्पित करते हैं, रूपादि विषय रूपी भेंट प्रदान करते हैं, का मतलब आप ही भोक्ता हैं। इंद्रिया तो विषयों को अंदर पहुंचा देती है और उन विषयों से रस कौन लेता है? तो आप लेते हो। रसन इंद्रिय ने रस को यानी अन्न को अंदर पहुंचा दिया और उस को खाया किसने? प्राण ने। और फिर खा करके प्राण स्वयं ही संतुष्ट होता है ऐसा नहीं, प्राण कभी भी अपना कार्य अपने लिए मात्र नहीं करता, इसलिए उसकी महत्ता है। जो बड़े होते हैं वो सबके आवश्यकताओं को देख करके वैसा वैसा जिससे सबकी आवश्यकताएं पूर्ण होगी करते हैं। तो ये मुख्य प्राण भी कार्यक्रम संघात में इसलिए मुख्य हुआ, प्रधान हुआ कि वो खाता पीता भी है तो स्वयं ही उसका फल नहीं लेता। खाने पीने से जो अन्न रस होता है और पुष्टि मिलती है, उससे पुष्ट बाकी सब भी होते हैं। यदि खाना पीना बंद हो जाए, प्राण ये खाना पीना न करें, तो आप बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, कुछ लेन देन हाथ से नहीं कर सकते और मन सोच नहीं सकता। जैसे चांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में वो श्वेत केतु को 15 दिन भूखा रखा ना, मन के अन्नमयत्व को समझाने के लिए उद्दालक ऋषि ने, और कहा 15 दिन अनशन करके तुम आ जाना मेरे पास। और गुरुकुल में 12 वर्ष रह करके जो वेद अध्ययन करके आए थे, जिस वेद अध्ययन का बड़ा अभिमान था उनको, श्वेत केतु को, फिर पूछा कि ऋग मंत्रों का पाठ करो, यजुओं का पाठ करो, सामवेद में जो ये इस अध्याय में ये मंत्र है उसको बोलो, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था श्वेत केतु 15 दिन कुछ न खाने से। फिर कहा कि तुम अब चले जाना और खूब खाना पीना, पुष्ट होकर के फिर आ जाना। फिर पूछा तो जो जो पूछते गए वेद मंत्र उनका ठीक से पाठ करता गया। का अर्थ है कि प्राण का भूख प्यास धर्म है, जैसे श्वासोश्वास प्राण लेता है तो सभी की पुष्टि होती है, उससे वो इस शरीर में ठीक से रह सकते हैं वागादि इंद्रिया। तो ये प्राणनादि क्रियाएं प्राण जैसे समष्टि के लिए करता है, सबके लिए करता है, ऐसे खाने पीने से होने वाली पुष्टि वह भी सबकी होती है, इसलिए उसमें प्राधान्य है, सबके लिए खाता है वो। तो सभी लाकर के दे देते हैं का मतलब प्राण का महत्व है, इसलिए सारा कमाई करके वागादि इंद्रिया बाहरी पदार्थों को प्राण के पास ला करके देते हैं कि उनको प्राण पर इतना विश्वास हो गया है कि प्राण अपने स्वार्थ के लिए कुछ उपयोग में नहीं लाता, जो भी उपयोग करता है वो उसका फल सब हम सब के लिए मिलता है, सभी के लिए प्राण वस्तुएं बांट करके देता है। एक प्रकार से खाता है तो उसका फल सभी के लिए होता है। तो फिर और भी 8वें मंत्र से मुख्य प्राण की ही स्तुति की जा रही है। इस प्रकरण के समाप्ति तक 13वें मंत्र तक प्राण की ही स्तुति आ रही है, वागादि इंद्रियों के द्वारा की गई, और इससे बताए जा रहे हैं उपासना उपयोगी गुण प्राण में। तो अष्टम मंत्र है, देवानामसि वन्नीतमः पितृणां प्रथमा स्वधा ऋषीणां चरितं सत्यं अथर्वांगी रसामसि। इसमें वागादि प्राण कह रहे हैं कि आप देवताओं के वन्नीतम हो, असि का अर्थ है हो, और असि का कर्ता होता है त्वम, असि एक क्रियापद है कि त्वम यानी आप ही, असि यानी हो, क्या हो तो देवताओं के वन्नीतम हो, तो देवताओं के वन्नीतम आप ही हो, वन्नीतम शब्द का अर्थ होता है, वन्नी शब्द का अर्थ होता है प्रापक, प्राप्त कराने वाला, पहुंचाने वाला, पोस्टमैन जैसा, कि ये देवताओं को हम जो देते हैं यहां उसको पहुंचाता कौन है, किसके पास देते हैं देवता के उद्देश्य से। तो यज्ञादि में अलग अलग देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग जो हवि सामग्री होती है वह देवताओं का भोजन है, डिब्बा है, पैक करते हैं। स्वर्ग में जैसे पहले हमने कई बार कहा ना कि स्मशान भूमि नहीं है कहीं पर भी, या पृथ्वी लोक में तो गांव है तो स्मशान भूमि रहेगी रहेगी, लेकिन वहां स्मशान भूमि जैसे नहीं है ऐसे देवताओं के स्वर्ग में बहुत बड़े बड़े बंगले हैं और वहां सबके अपने अपने मीटिंग रूम, बेडरूम, ध्यान कक्ष आदि सब हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी बंगले में कोई रसोई नहीं है, किचन बनता ही नहीं है। यहां वन बेडरूम बनेगा तब भी किचन तो बना नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं पर भी आप स्वर्ग में जाकर के खोजो कि इस देवता का किचन कहां होगा, कहीं किचन है ही नहीं, वो बनता ही नहीं है। वहां का जो आर्किटेक्ट है बना करके नक्शा दे देता है, उसमें किचन लेस होता है, किचन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, बनाना पड़े तब तो जरूरत है रसोई की। तो देवता कहीं भोजन बनाते नहीं है, बनता ही नहीं उनके लिए, वहां कोई रसोईया महाराज नहीं है वहां। क्यों नहीं जरूरत है, खाते नहीं है क्या, खाते हैं, लेकिन उनके लिए भोजन बनता है यहीं पर। जो यज्ञादि होते हैं तो देवताओं की अलग अलग जो हवि हैं वे हवि उनका भोजन है, और आप यज्ञ करते हैं तत्त्व देवता के उद्देश्य से एक प्रकार से वो जो यज्ञ में प्रदान करने के लिए हवन सामग्री लाते हैं ना, वो देवताओं का भोजन है। और सब यज्ञ में एक ही सामग्री नहीं हुआ करती, सब देवताओं की अलग अलग हवि होती है। तो जो यज्ञ कर रहे हैं उस देवता का जो प्रिय भोजन होगा वही उस हवि के रूप में दिया जाता है, और वो बनाया अपने और पैक करके जैसे डिब्बा पहुंचाने वाले हैं कहते मुंबई में ऐसे कोई कहीं होता है ना, तो फिर वो जिसने जिसने ऑर्डर दिया हुआ है जैसा जैसा वो डिब्बा पहुंचाता है ना डिब्बा, ऐसे वन्ही है देवताओं का डिब्बा पहुंचाने वाला, बना करके आप पैक करके दे देते हैं हवन सामग्री मंत्र उच्चार के साथ। जब आवनीय अग्नि में डालते हो तो आवनीय अग्नि वो देवताओं को आपके द्वारा दिया गया जो भोजन है वो पहुंचाता है। तो वन्ही शब्द का अर्थ होता है पहुंचाने वाला, प्रापक, वह प्रापणे धातु है, उसी से फिर वन्ही शब्द बनता है तो अर्थ निकलता है प्राप्त कराने वाला। आपने यहां से दिया अग्नि के पास और अग्नि ने आंख से तो दिखेगा वो सारी सामग्री जल करके राख हुई, लेकिन उसका जो सूक्ष्म रूप है अग्नि उस देवता तक पहुंचा देता है और देवता उसी को खा करके हृष्ट पुष्ट होता है। तो इसलिए कहा गया कि देवानाम त्वम वन्नीतमः असि, तो वन्नी कहने से ही हो जाता, तम शब्द का प्रयोग किया है, ये तम एक प्रत्यय होता है। तो देवताओं तक आपके द्वारा प्रदान की गई भेंट देवताओं को पहुंचाने वाले अनेक हैं, लेकिन उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं पहुंचाने वाले में, उसे कहा जाता है वन्नीतम। तम प्रत्यय होता है, गुड बेटर बेस्ट ऐसा जैसे इंग्लिश में कहा जाता है ना, ऐसे ये तम प्रत्यय उसके लिए होता है। वन्नी का अर्थ हुआ प्राप्त कराने वाला, वन्नीतर का अर्थ है दो प्राप्त करा रहे, उन दो में से एक ज्यादा अधिक अच्छा पहुंचाने वाला, और जितने भी पहुंचाने वाले हैं उन सब में सबसे उत्कृष्ट सेवा देने वाला जो है, कुरियर कंपनियां कई एक है लेकिन कोई कोई कंपनी अच्छी सेवा देती है तो उसको आप पसंद करते हैं, तो ऐसे ही ये देवताओं को आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली भेंट पहुंचाने वाले कई हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ यदि कोई है पूर्ण विश्वास पात्र, इसमें क्या पैक किया है खोल करके देखा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करता, जो पूर्ण जैसी पैकिंग आपने की ऐसी ही पहुंचा देता है और समय पर पहुंचा देता है, वो है अग्नि। वो और उसे कहा गया कि आप ही, और वो अग्नि भी किसका रूप है, प्राण का ही, इसलिए देवानाम त्वम वन्नीतम असी तम प्रत्यय कर दिया, और पितृणाम प्रथमा स्वधा, तो जो पितर होते हैं देवता अलग है इंद्रादि और पितर अलग है आर्यमादि, तो ये जो पितरों को जो आप अन्न देते हैं उसका नाम है शास्त्र में स्वधा, देवताओं को जो अन्न देते हैं उसका नाम है हवि, अलग अलग नाम है पितरों के भोज्य पदार्थों को स्वधा कहा जाता है, देवताओं के भोज्य पदार्थों को कहा जाएगा हवि। तो हवि का प्रापक वन्नी रूप धारण करके कौन है, ये प्राण ही है, जैसे ऐसे ये प्राण ही पितरों को जो आप नांदी श्राद्धादि करते हैं, जो भी वैदिक कार्य किया जाता है उसमें हवन तो बाद में शुरू होता है, और हवन में फिर तब तक देवता के उद्देश्य से हवि दी जाती है, उससे पहले आपको कोई भी यज्ञ करो तो पितरों को तृप्त करना होता है, पितरों का आशीर्वाद लेना होता है, उसके लिए फिर पितरों को तृप्त करना है तो भोजन आदि कराना पड़ेगा ना, तो भोजन पितरों का जो है भोज्य पदार्थ वो है स्वधा, और वो हवि की अपेक्षा पहले बनाना होता है, ये नहीं कि हवि पहले बना करके कहा तो ठंडा हो जाएगा ना, गरम गरम भी देना है भोजन, तो पहले नांदी श्राद्ध करना है, तो नांदी श्राद्ध में जो सामग्री उपयोग में आती है उसका उपयोग पहले होगा, इसलिए स्वधा का विशेषण है प्रथमा। स्वधा यानी पितरों को आपके द्वारा दिया जाने वाला अन्न, वो स्वधा, और उसमें प्रथमत्व क्या है, तो देवताओं के आपके द्वारा दिए जाने वाले भोजन की अपेक्षा प्रथमत्व, पहले पितरों को भोजन कराओगे फिर देवताओं को। नांदी श्राद्ध करेंगे का अर्थ है आप पितरों को भोजन करा रहे हैं, पितरों को तृप्त कर रहे हैं, और वो पहुंचाएगा कौन, तो उसको भी पहुंचाने वाला प्राण ही है, तो इसलिए ये कहा कि पितृणाम प्रथमा स्वधा या तस्यापि वन्नीतमः त्वमासि, ऐसा लगाना, उसके भी प्रापक आप ही हैं। और ऋषीणाम चरितम सत्यम अथर्वांगी रसाम अपि असि, तो यहां ऋषि शब्द का अर्थ है इंद्रिया, चक्षुरादि इंद्रिया, इनको ऋषि कहा जा रहा है, इसलिए कि ऋष धातु है गत्यर्थक, और गत्यर्थक ऋषि धातु से ऋषि शब्द बना है, ऋष धातु से उसका अर्थ ज्ञान भी होता है, जो भी गत्यर्थक धातु होगा उसके तीन अर्थ निकलते हैं, गति भी, ज्ञान भी और प्राप्ति भी। तो यहां पर ज्ञान अर्थ लेना चक्षुरादि इंद्रिया,